इसकी अगली आयत में वल्लज़ीना कफरू बादुहुम औलिया उबाद, अब तस्वीर का दूसरा रुख है, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो आपस में एक दूसरे के साथ ही हैं। आप मत कहिए कि एक काफिर दूसरे काफिर के मुकाबले में मुसलमान की मदद करेगा। दुनिया के मुल्कों को जहन में लाइए, आज के बड़े बड़े मुल्क, हम कितना फख्र से कहते हैं ये मुसलमानों से बड़े खैर ख्वाह हैं। मसलन बाज लोग कहते हैं सऊदी अरब, मसलन फलां मुल्क सऊदी अरब की मदद करेगा। करेगा कब? जब सऊदी अरब की जंग किसी दूसरे काफिर से नहीं होगी। बात समझे? कुरान पाक में तख्सबुहुम जमीयन वक्लूबुहुम शत्ता। यहूद नसारा को बज़ाहर एक समझो लेकिन उनके दिल आपस में फटे हुए हैं। कॉमन कॉज इनकी इस्लाम दुश्मनी है, लेकिन यहाँ बता दिए कि काफिर बाहर और काफिर का दुश्मन दोस्ती होता है। अरबों के कबायली माशरे में माहदों का बहुत अहतमाम होता था, विलायत का मामला अहम था, वो आप बड़ी संजीदगी से निभाते थे, क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट है ना, पुलिस है, आप किसी पे ज्यादती करते हैं पुलिस आ जाएगी। उस दौर में कबीलों ने आपकी मदद के लिए आना होता था, किसी शख्स पर कोई तावान पड़ जाता तो उसके वली और उसके हलीफ उसकी मदद करते थे, किसी का घर गिर गया तो सारे मिलके बना देते थे, यानी सोशल सेटअप था एक उस दौर का। तो यहाँ एक असूल बता दिया कि काफिर तो एक दूसरे के दोस्त होंगे और अहले ईमान के दोस्त होंगे। जो मुसलमान हिजरत नहीं कर चुके, अब उनका अहले ईमान के साथ विलायत का ताल्लुक तो टूट गया, लेकिन बहरहाल वक्त पड़ने पे उनकी मदद की जाएगी। हाँ इल्ला तफलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन कबीर। और अगर तुम इन कवायद जवाबित की पाबंदी नहीं करोगे तुम, तो याद रखो जमीन में फितना फैलेगा और बहुत बड़ा फसाद होगा। ये आज के दौर के मुसलमान को पैगाम है अल्लाह का। दुनिया में मुसलमानों में से किसी गिरोह पर अगर कुछ मुश्किल है, जुल्म है और ज्यादती है, और दूसरे मुसलमान मुल्क उसका साथ नहीं देते, तो फितना होगा। आज इस फितने का नाम लेने की जरूरत है? किसको नहीं पता, खबरें सुन लें, नेट पे जाके तस्वीरें ही देख लें। जब मुसलमान मुल्क गूंगे बन जाते हैं ना किसी दूसरे मुसलमान मुल्क की हिमायत में, सिर्फ इसलिए कि उनकी ऊपर वायदे हो चुके हैं गैर मुस्लिमों से कि आप उनकी मदद में एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, तो वो फितना होगा जो आज हो रहा है। पता क्या चला कि तुम इस्लाम को सामने रखो, इस्लाम के बाद हिजरत और जिहाद आ जाए तो सोने पे सुहागा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, उसी की तौकीद है, कह लीजिए कि जो मजमून चल रहा है उसी को जरा बड़े प्यारे अंदाज में पेश किया जा रहा है। 74 वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए, वह हाजरू और हिजरत की, वह जाहदू फी सबीलिल्लाह, और जिहाद की अल्लाह के रास्ते में। पीछे गुजरी है ये बात, मुहाजरीन मक्का। वल्लज़ीना आबू व नसरू, और वो लोग जिन्होंने मदद की, घर दिए, कौन बोलिए? अंसारे मदीना। मिलना क्या इन दोनों को? देखिए, आपके लिए रगबत, मेरे लिए रगबत, अल्लाह के रास्ते में घर छोड़ने पड़े या अपने घरों में दूसरों को जगह देनी पड़े, अल्लाह आसमान से सर्टिफिकेट दे रहे है, वलाइकहुमुल मोमिनूना हक्का, ये है हकीकी मोमिन। गलबा इस्लाम में सबसे बड़े मुआविन वो हैं कि जो घर छोड़ने वालों को घरों में जगह दें, और जो घर छोड़ रहे हैं वो माल की मोहब्बत में उन मुल्कों में जगह ना बनाएं बल्कि इस्लाम के गलबे के लिए जाएं। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इनके लिए बख्शिश भी है। किस बात की? पिछली जिंदगी के गुनाह तो हैं, लेकिन ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, इस काम के करने के दौरान भी गलतियां होंगी हमसे, हक अदा नहीं होंगे, तो अल्लाह कहता है डोंट वरी, मैं माफ कर दूंगा। तुम मेरे जो, मुझे पता है तुम मेरे रस्तों में निकल पड़े हो, या मुहाजिर बन के बैठे हो या अंसार बन के साथ दे रहे हो, गलतियां करोगे मैं माफ करता जाऊंगा। और रिज़्क़ुन करीम क्या है? जो तुमने इस्लाम पे लगाया है मैं तुम्हें सुकून का रिस्क दूंगा, तुम्हारी औलादों की खुशियां दूंगा, तुम्हारे जरिए से इस्लाम को गालिब कर दूंगा, तुम्हें मेरी तरफ से कभी कोई कमी नहीं मिलेगी, और तुम इस रास्ते में आओगे तो तुम्हें सब कुछ वो मिल जाएगा, तुम ले लोगे, तुम्हें फायदा हो जाएगा। ये है इस्लाम का वादा। आज देखिए इस्लाम पे बड़ी सख्ती है, वल्लाही सख्त हालात है, लेकिन अगर ये आए तो इसमें दर्ज किया हुआ अजर याद रहे ना, तो मुझे नहीं लगता में से कोई भी इस्लाम के गलबे में मददगार ना हो। एक छोटी सी बात और, मुझे पता है बहुत भारी बातें हो गई आज, लेकिन समझ लें, जीने के दो रास्ते हैं। एक है फराइज पे जिएगे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, बच्चों की शादियां, इज्जत इस्मत की हिफाजत, डेफिनेटली अल्लाह ने चाहा 100% जन्नती हैं, इल्ला माशाल्लाह, अल्लाह नोज द बेस्ट, ऐसे सब मुसलमान जन्नत में जाएंगे जो आज भी सिर्फ नमाज रोजा कर रहे हैं। लेकिन غلبہ اسلام میں مددگار نہیں ہے، پین نہیں فیل کرتے، کہہ لیں خود بچے ہیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ اپنے بچوں کے ابھی رشتے ہی ڈھونڈ رہے ہیں اور ابھی ان کے گھروں کو بسانے کی فکروں میں ہیں، اور اپنے بچوں کے بچوں کی کرتا ٹوپیاں ہی بنا رہے ہیں اور وہ ان کے کھانے ہی کھلا رہے ہیں اور ان کے لیے فکریں ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ جانے درجے نہیں ملیں گے ان کو، لیکن جنت مل جائے گی. دوسرا درجہ جو اس پورے سبق کی جان ہے، عظیمت کا راستہ، عین ضا میم، عزم سے جینے والے، فرائض سے اوپر اٹھ کر مستحبات کو اپنانے والے، اور ذاتی عبادات سے اوپر اٹھ کر اجتماعی طور پہ انسانیت کے نفع کے بننے والے، ان کو ملنے ہیں جنت کے اعلیٰ درجے. حوریں بھی ان کی ہیں اور جنت کے اعلیٰ مقام اور فردوس بھی ان کی ہے، اور اللہ کے چہرے کے دیدار بھی ان کو ملنے ہیں. یہ جو جنت کا کلاس سسٹم ہے نا، 100 درجے تو ہیں ہی ہیں نا جنت کے، اور سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، مقربین یہی لوگ ہیں جو آج کے ان فتنوں کے دور میں اسلام کو عام کریں، قرآن کو عام کریں، دین کو عام کریں، اور اس کے لیے تن من دھن کی باری لگائیں، بغیر کسی نیگیٹیوٹی کو دل میں جگہ دیے، وسوسوں کے سانپوں کو کچل کر یقین کی بنیادوں پہ کھڑے ہو جائیں کہ آج کے دور میں اللہ ہمیں قرآن کی خدمت کرنے والے بنا دے، ہمارا جہاد یہی ہے. ایسے لوگوں کے لیے لہم مغفرتوں و رزقن کریم. یہ ہے حقیقی مومن، سچے مومن. یا آپ مہاجر بنیے یا انصار بنے، کچھ نہیں جو بنتے نا، خطرہ ہو جاتا ہے کہ وہ منافق بن جائے گا، کیونکہ پھر مسئلے تو والا دین اپنانا پڑتا ہے، پھر کہتے چپ کرو، چپ 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 بولنا نہیں زیادہ. دیکھیں اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پہ نا، بنی الاسلام یلا خمسن، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات. یہ 5 ارکان پورے کرنے والے مسلمان بن جاتے ہیں. حقیقی مومن بننے کے لیے اس میں ہجرت اور جہاد کی اینٹ لگانی پڑتی ہے. سورہ حجرات آیت 15 میں جا کر آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرق بتا دیا کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے. نمبر 1، یقین قلبی، دل کو یقین دلا لے آج سے کہ آج کے دور میں اسلام کو غالب کرنا ہے تو علم کے راستے، قرآن کی خدمت کے راستے، ماسس تک پہنچا دو، روٹس تک پہنچا دو سوسائٹی کی بنیادوں پہ. آپ دیکھیں درختوں کے پتوں کو پانی دیں گے تو درخت سوکھ جائے گا، ٹہنیاں دھوتے رہیں سوکھ جائے گا، آپ درخت کی جڑ میں پانی دے دیں سارے درخت کو پانی ملے گا. آج ہمیں ایسی پالیسیز اور ایسی کوششیں اور عملی کوششیں کرنے ہیں، علم کا پانی، قرآن کا نور معاشرے کے ہر سطح پہ جائے، امیروں پہ، غریبوں پہ، پڑھے لکھوں پہ، ان پڑھوں پہ، چھوٹوں پہ، بڑوں پہ، ہر زبان میں اس قرآن کے پانی کو پھیلا دیں. یہ کام کریں. مجھے ایسے لگتا ہے اکثر کہ ہاتھ میں وہ شاور ہے جس سے لوگ پودوں کو پانی دیتے ہیں، جہاں کوئی کہتا ہے پانی دے دو چل پڑے، ایک پودا سیراب ہوگا، 4 لوگ آپ کی اس گھنٹے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چل پڑے، آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ گاڑی میں جائیں گے، گاڑی میں آئیں گے، آپ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ 4 لوگوں کو پانی دے کے آ جائیں. کہیں کو کہتے ہیں آ جائیں، 100 لوگوں کی کیاری بیٹھی ہے، پڑی ہوئی پھولوں کو پانی دے جائیں، دے جائیں جائیں. آپ کا میرا کام ہے جگہوں سے، جہتوں سے، وقت سے بے نیاز ہو کر اپنے حالات کے مطابق دی بیسٹ تھنگ کر لیجئے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ. کوئی بہت بھاگ سکتا ہے وہ بھاگے، کوئی سارا دن بھاگ سکتا ہے بھاگے، کوئی نہیں بھاگ سکتا وہ دل سے سچا رہ کر جو کر سکتا ہے وہ کر لے. اصل پکڑ قیامت کے دن ان کی ہونی ہے جو کر سکتے تھے اور نہیں کرتے تھے، جو نکل سکتے تھے گھروں سے نہیں نکلے، جو مال لگا سکتے تھے نہیں لگائے. مجبوروں کو تو اللہ نے ویسے ہی بہت فائدہ دینا ہے. تو 2 چیزیں ہیں، یقین قلبی اور جہاد فی سبیل اللہ. 5 چیزیں بنی الاسلام میں اور 2 یہ ڈال لیں، ٹوٹل 7 شرطیں پوری ہوں گی تو سچا مومن بنیں گے آپ. میں دہراتی ہوں جملے کو، مسلمان بننے کے لیے 5 چیزیں کافی ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، الحمدللہ یہ ہیں پہلے درجے کے لوگ، اور اکثریت مسلمانوں میں آج بھی ایسی ہے. لیکن آپ حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں، اولئک مومنون حقا، تو ان 5 میں 2 چیزیں ڈال لیں، دل کا یقین اور جہاد فی سبیل اللہ. یہ 7 شرطیں پوری کیجیے، اللہ آپ کو بندہ مومن کا ٹائٹل دیتا ہے، اور اس بندہ مومن کا نقشہ اس سورت کے شروع میں. اب آپ سورت کا آغاز یاد کر لیں، جا کے گھر میں پڑھ لیں سورہ انفال کا شروع، آیت 2 اور 3 میں اللہ نے جو ایک خوبصورت کردار دیا تھا، اللہ کی آیتوں کو پڑھنے والے دل ان کے ڈر جاتے ہیں، یقین والے ان کے دل لرزتے ہیں، قرآن پڑھتے وقت کانپ رہے ہوتے ہیں، سنتے ہیں تو دل میں ایمان بڑھتا ہے، اور اللہ کی ذات پہ بھروسے ہیں، نمازیں قائم کر کے زکوٰۃ دیتے، مال خرچ کرتے. وہاں بھی یہی بات تھی، اولئک هم المومنون حقا. کس کو یاد آ گئی آیت؟ चार नंबर आयत का एंड है इसी सूरत की, वहां जो बात थी यहां ब्रैकेट में पूरी कर दी। अब यहां सफा पूरा हो गया, मोमिन की शख्सियत का एक रुख और एक सफा पूरा हो गया। और अब आपके मेरे लिए रास्ते खुले हैं, जो करना चाहे। वह आखिरी आयत है, ये अब दूसरा रुख दिखा रही है आपको। आयत 75 देखिए, वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए, मिन बाद, उसके बाद, यानी फौरी नहीं निकले घर से अल्लाह के नबी की कॉल सुनते ही, सब ने फौरी हिजरत नहीं की थी याद रखिएगा, लेकिन मिन बाद, थोड़े अरसे के बाद, बाद में, और ये वो लोग हैं जो बाद में मुसलमान हुए, न्यू मुस्लिम रिवर्ट्स, वहा जरूर हिजरत की, वजाहद और जिहाद किया, माकुम तुम्हारे साथ, फौलाइका मिनकुम, तो ये लोग हैं तुम में से। यानी शुरू में नेकी के सफर में जो चल पड़े वो तो थे वो, लेकिन जो अब बाद में, और इसमें आज के दौर के भी नेक लोग आते हैं, हर दौर में अपने अपने दौर में ईमान के बाद हिजरत और जिहाद करने वाले मुसलमान सब इसी में से हैं, ये हिजबुल्लाह का हिस्सा है। वउलुल अरहाम इबादुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह, और वो रहमी रिश्तेदार अल्लाह के कानून में एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं, यानी शरीयत के कवानीन में खून के रिश्ते मुकदम रखे गए, मसलन विरासत का कानून खून के रिश्तों को बुनियाद बनाकर तरतीब दिया गया, उसमें कोई नहीं चलेगा हेर फेर, आप और मैं किसी वारिस को महरूम नहीं कर सकते। इसी तरह आप देखिए कि खूनी रिश्तों की तरजीहात है, लेकिन असल बात दीन का रिश्ता क्या है, जो ईमान का रिश्ता है, जो गलबा इस्लाम का रिश्ता है। और आखिर में कह दिए, इन्नल्लाह बिकुल्ली शयइन अलीम, अल्लाह सब जानता है, आपको मुझे फतवा देने की कोई जरूरत नहीं, किसी के ईमान पे शक ना करें, किसी को मुनाफिक ना कहें, किसी को कमजोर ईमान वाला ना समझें, किसी को अंदर से कुछ बाहर से कुछ ना कहें, किसी को दोगला ना कहें, अपने आप को चेक कर लें, ये आईना। अब अपने आप को कैसे चेक करें, इसका एक बड़ा सिंपल सा क्राइटेरियन आपको समझा देती हूँ। आप कैसे पहचाने कि आज के दौर में मैं क्या कर सकती हूँ, तो देखिए पहले नंबर एक चेक कीजिए कि मैं मुहाजिर बन सकती हूँ कि अंसार। क्वेश्चन यही है ना, मेरी बात के साथ हैं या थक गए हैं। मैं आज इस गलबा इस्लाम के लिए कुछ करना चाहती हूँ, राइट? आप चाहते हैं कुछ करना, ठीक है, लिखिए। सवाल ये है कि मैं क्या करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आज के दौर में मुझे मुहाजिर बनना है या अंसार बनना है। इसका एक आसान सा क्राइटेरियन है, नंबर एक अपने जाती हालात को देखिए, घरेलू माहौल को देखें। अभी तो घर में 5 वक्त के नमाजी भी नहीं है, लोग पढ़ते ही कोई नहीं है, मुखालफत इतनी सख्त है कि कपड़े भी पूरे पहनकर अगर सर पे एक गज का टुकड़ा रखें तो धमकियां तलाक की मिल जाती हैं और फला फला मिल जाती हैं, कुछ भी कह लें, यानी अभी अपने ही कदम नहीं जमे हुए, पता नहीं किस बेदीन मुसलमान के घर पैदा हो गया और किस बेदीन से वास्ता पड़ गया और बात बात पे तलाक की धमकियां। तो मान लीजिए कि आप फिर आज के दौर के मुहाजिर हैं, हैंड टू माउथ है, दीन के मामले में अब हैंड टू माउथ है, अभी आपके अपने ही नहीं कदम जमे हुए, तो फिर मुहाजिर बने, फिर अभी आहिस्ता आहिस्ता अपने घर का माहौल इस्लामिक बनाए, अपने शौहर को फजर के लिए भेजें, अपने बच्चों के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डालें, अपनी नमाज रोजे को पूरा करें, अपने आप को लेकर चलें, जमते जाएं। और मैं अक्सर कहती हूँ कि आज के मुहाजिर कौन है, जो नए नए दीन सीखने आते हैं, किसी क्लास में, कुरान की क्लासेस में, वर्ल्ड वाइड जहाँ बात होती है या स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है, तो मुझे ऐसे लोग दिल के इतने करीब महसूस होते हैं जो कहते हैं हमने अभी नया नया कोर्स शुरू किया है, कोई हफ्ता या दिन शायद ही खाली छुटता हो कि जहाँ माशाल्लाह दुनिया में कहीं से भी कोई मैसेज स्टूडेंट का ना आ जाए, मैंने अब शुरू किया है, मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरा हाल बदल गया। लास्ट वीकेंड भी मैं एक सिस्टर के साथ ही, तो उसकी आंखों में पानी था, और सिर्फ अभी आपको पता है 1 महीना हुआ उसको एक कोर्स ज्वाइन किए हुए, कहती मैं बदल गई हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा आज आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, ये है वो है, क्यों? क्योंकि उनको रास्ता मिल गया ना। तो ऐसे लोग जो कपड़े भी नहीं पूरे भी पहन पाते, वो कहती मैं आपके स्कूल में आती थी तो मेरा दिल करता था मैं यूं अपनी बच्ची को फेंकूं और बाहर भाग जाऊं, क्योंकि मेरा हाल ऐसा होता था और मुझे आप अजनबी लगते थे। वल्लाह ही आज हमारा ये कलमिया है कि आज मुसलमानों में कई ऐसे मगरिब ज्यादा सोच वाले हो गए हैं, पाकिस्तान में रह के गैर मुस्लिम है, इस्लाम से डरते घबराते। मुझे भी अल्लाह ने एक सफर में एक छोटा सा एक्सपीरियंस कराया था, कोई बात नहीं हुई एक लड़की से, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मैं उसके साथ बैठी हूँ और एयर होस्टेस आके पास कोई बात कर रही है, ऐसे ही हम कोई बात कर रहे हैं कुछ, कैसे कोई पता नहीं, उसने मदरसे की बात की तो वो लड़की कांप रही थी मेरे साथ बैठी थी, कहती हाँ मदरसे बनाए ताकि लोगों में बम फेंके, आप दीन वाले लोग मदरसे इसलिए बनाते हैं कि ऐसे बच्चे तैयार करें कि बम फेंके। तो मैं उसको मुंह देख रही हूँ और एयर होस्टेस भी देख रही है, इतनी वो एंटी मुस्लिम थी एंटी इस्लाम थी कि मेरे निकाब के दस एयर होस्टेस को कहती इनको यहां से उठाएं, मुझे इनसे खौफ आ रहा है। अल्लाह की कसम कोई बात भी नहीं अभी हुई, सिर्फ मेरे हाल हुलिये से उसको लग रहा था मेरे पहलू में बम है और मैंने फोड़ देना है। और एयरपोर्ट में मैंने उसको सिगरेट पीते हुए भी देखा था, पाकिस्तान में आपके प्यारे मुल्क में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 घंटे की फ्लाइट के दौरान फिर जो अल्लाह ने जैसे बात हुई कि एंड पे वो रो के ही गई, और वो कहती मैं क्या करूं, मुझे दीनदारों से डर लगता है, मुझे खौफ आता है, मैं और मेरी अम्मी कहीं जाते हैं तो आंटियां हमें तनकीद से देखती हैं, और वाकई उनका जो हाल हुलिया था तनकीद करते होंगे और ना समझ लोग जरा खुल के कर देते हैं। अब पाकिस्तान में तो कोई नहीं किसी को सिगरेट पीता देख के कह सकता और भी हो, लेकिन इतना खौफ था उसके दिल में इस्लाम पे, और मीडिया ने सोने पे सुहागा और ही कर दिया। तो अगर आप अभी इस कैफियत में ना तो कुरान सीखें, फिर आप आए किसी मदरसे में किसी कुरान कोर्स में दाखिला लें, फिर आपके लिए बेस्ट थिंग जो है वो आपके लिए सबीलुल जन्नत है, आप सीखें रूहुल कुरान में आ जाएं, तफसीर से सीखें, दौरे कुरान करें, इसके सारे रंग है, कुरान तो एक ही है। लेकिन दूसरा दर्जा फिर क्या है कि आप पनप चुके हैं माशाल्लाह, आपके घर का माहौल मुवाफिक है, आपको नमाज पढ़ने पर डांट नहीं पड़ती, आपको छुप छुप के क्लोजेट्स में नमाज नहीं पढ़नी पड़ती, आप हिजाब करें आपके घर वाले कुछ नहीं कहते, आप कुरान सीख रहे हैं, आप कर रहे हैं, कुछ सालों से आपके घर में दीन की फिजा कायम हो चुकी है, तो फिर आपको अंसार बनना पड़ेगा। नए लोगों को मुहाजिर समझकर उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं। और मैं कहती हूँ जितना प्यार मुझे नए नए दीन वालों पे आता है, शायद कई लोग मुझे कहते भी होंगे दिल में कि नए लोगों को तो आप बड़े प्यार से और इतनी उनकी गलतियों को देख रहे हैं, हमारी छोटी सी आप पकड़ लेते हैं, करूं क्या कि वो मुझे नए नए बच्चे लगते हैं, वो बेचारे क्या करें। लेकिन आप अगर मुहाजिर नहीं है तो फिर आप अगर अंसार नहीं बनते तो फिर सिर्फ तीसरा नाम मुनाफिक रह जाता है। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक दे कि आप अपना मुहासबा खुद करें, आज घर जाके सोचिएगा मेरे जाती हालात किस नहज के हैं, अभी खुद पकड़ने की जरूरत है, तो फिर आप कोई ऐसा गिरोह ज्वाइन करें। अब एक सवाल है कि अपने ईमान को बंदा संभाले कैसे, ये ईमान के दर्जे कहाँ से मिलते हैं, तो इसके लिए सोहबत सालेहीन है, ऐसे लोगों का साथ आपको मिल जाए, या मुहाजर बन जाए या अंसार बन जाए या किसी की मदद करें, लेकिन कुरान से जुड़ जाए, कुरान को अपनी तन्हाइयों का साथी बना लें, आपस में ताल्लुक कायम करें। और ये जो मुहाजिर अंसार की टर्म आज भी बनेंगी, जो जमे हुए लोग हैं ना, वो नए लोगों के साथ घरेलू रابطे रखें, उनके बच्चों की अपने बच्चों से दोस्तियां कराएं, उनके शोहरों की अपने शोहरों से दोस्तियां कराएं। आप कहते हमारे मर्द नहीं मानते, भाई क्यों नहीं मान रहे, इसलिए कि आज तक आपने अपनी दूसरी साथियों के शोहरों से उनकी दोस्ती नहीं कराई। याद रखिए दीन के रास्ते में अकेले नहीं चल सकते आप, अगर आपका एक प्लेटफॉर्म बन गया, मिसाल देती हूँ समझाने के लिए, कोई पर्सनल बात नहीं है, आप यहाँ स्कूल में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, आप आ रहे हैं सीख रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह आपको अंसारुल्लाह पे ले गए मुहाजिर के दर्जे से उठाकर, अब घरों में इसका असर दिखना चाहिए, क्योंकि पुराने छूटते हैं रिश्ते भी टूटते हैं, मान लीजिए पीछे आप पड़ चुके हैं इस बिरु साहब बिरुवरा भी, तो अब अपने शोहरों की अपनी दोस्तों के शोहरों से दोस्तियां कराएं, दावते करें, इतने जो खाने पकाते हैं वल्लाह ही आपको कोई लंबे चौड़े खाने पकाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चाय की प्याली पिल, आप किसी ऐसे लोगों को अपने घर में बुलाएं जो अभी डरते डरते दीन की तरफ आ रहे हैं, सिर्फ एक चाय की प्याली, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें कल रिस्कन करीमा और तुम्हें मैं अपनी तरफ से मदद की सूरत में वापस करूंगा। बाद लोग सिर्फ इसलिए दर्स नहीं रखते घरों में, हाय कौन दही बल्ले बनाए, कौन पिज्जे मंगाए, कौन खिलाए, ना करें। आज अगर आप और मैं अपने घर में सिर्फ एक चाय के कप पे 50 दोस्तों को बुला सकते हैं ना, सिर्फ इसलिए कि वो आएं और दौरे कुरान ज्वाइन करें, तो मैं नहीं करती तो मैं मुजरिम अल्लाह के हाँ, मेरी बड़ी बड़ी दावतें और खाने मेरे खिलाफ कल हुज्जत होंगे, और अगर मैं ये कर लेती हूँ तो ये अल्लाह के खाते में डल जाएगा मेरा खर्चा कि इसने मेरे नाम पर लोगों को बुलाया था, घर गंदा होगा ना, अल्लाह साफ करवा देगा आपका, कर लें साफ, नींद छोड़नी पड़ेगी ना। मैं कहती हूँ ये जो दिन है ना, आप देखिए 7 शाबान है, ये जो 10-12 दिन है ना दौरे कुरान के बीच में, आपके इस जगह में आपको पता है कि इस मंडे से रमजान का प्रोग्राम शुरू हो रहा है जिसका हिस्सा दौरे कुरान होगा, जो जहां से सुन रहे हैं बाहर वाले भी, हर जगह दौरे कुरान होने हैं। मैं कहती हूँ ये 10-15 दिन आप अगर सो गए तो सारा साल सोइएगा, फिर शौक से सोएं, और अगर आज से आप एक एक दिन का हिसाब लगा के अपने घरों में लोगों को बुलाते हैं, लोग नहीं आते सारे हर जगह, कल आपके पास इधर है ना प्रोग्राम, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी लिस्टों में कोई एक सिस्टर भी ऐसी हो जिसको आप पर्सनली कल के लिए फोन करके इन्वाइट ना करें। क्या है 2-2.5 घंटे फिक्र पड़ जाती है साथियों को, खाना कैसे खिलाना कब है। मैं कहती हूँ सिर्फ इस सोच के साथ अगर आप और मैं अपने दोस्तों को कल इधर बुला लें ना, कि वो यहाँ आकर 2 घंटे में क्या इंस्पिरेशन लेकर जाते हैं कि वो रमज़ान को प्रोडक्टिव कर लें, तो आपके मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। और कोई कहे हाय कैसे आऊँ, बड़ा मुश्किल है, शाम का वक्त है, मसरूफ बड़ी हूँ, तो फिर मेरे आपके नसीब में नहीं है। सीधी सी बात है, दुनिया के काम तो कभी नहीं ख़त्म होने, असल में ये अल्लाह फिर हमारे हाथों को उलझा देता है। तो अल्लाह ताला हमें इस सूरत का हक अदा करने की तौफीक दे, या मुहाजिर बना दे या अंसार बना दे, मुनाफिकत से बचा ले, और अल्लाह ताला फितनों से बचा ले, हमारे हमारी नस्लों के लिए अल्लाह वो काम हमसे ले ले कि कम अज़ कम वो तो सुख और चैन की ज़िंदगी बसर करें। हम तो सोच सकते हैं पलट के पीछे अपने मुल्कों में जाने का इन फितनों के सर उठाने पर, अगली नस्ल नहीं सोचेगी, जो यहाँ पैदा हुए वो नहीं जाएंगे सऊदी अरब, इल्ला माशाल्लाह। मैं नाम लेके इसलिए कह रही हूँ कि हमारी भी यही पहुँच होती है, सऊदी अरब पहुँच गए तो बड़े अमीर नेक हो जाएंगे, जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों को मुसलमान करें, उन मुल्कों के अंदर इस्लाम ले आएं, आपको अपनी जायदादें छोड़ के कहीं भी नहीं इंशाल्लाह जाना पड़ेगा, वरना इन जायदादों में किसी और के हिस्से होंगे। लिख ले मेरी बात, हज़रत उमर का दौर था तो शायद ईरान के ख़जाने मिले, तो हज़रत उमर के पास ख़जाना लाया गया ऐसे हीरे मोतियों, क्योंकि वो बादशाह जो थे वो हीरे मोती पहन के बैठते थे अपने स्टेजेस पे, तो हजरत उमर रोने लग गए। साथियों ने पूछा, उमर आज तो इतनी खुशी का वक्त है, इतना बड़ा मुल्क फतह हो गया, तो रोने लगे, कहने लगे ये हीरे मोतियों को देख के रो रहा हूँ, इससे मुसलमानों में ईमान कमज़ोर हो जाएगा। तो जिन बच्चों के लिए घर जायदादें छोड़ रहे हैं उन पर कब्ज़े खैरों ने कर लेने हैं, पढ़िए आज जिन मुल्कों से मुसलमान निकाले जा रहे हैं और कुफार आ रहे हैं, तो जायदादें थी ना किसी के नाम पे, किसी ने अपने अल्लाह के नाम पे की होती, सब ने वहाँ अल्लाह के रास्तों के काम कर रहे होते, तो आज वो बची होती। अल्लाह वो घर भी हमसे ले लेता है, वो औलादें भी वहीं रह जाती हैं, और हम मुंह बसोर के कब्रों में पहुँच जाएंगे। तो बड़ा कड़वा सबक था आज का, अल्लाह ताला मुझे आपको इससे फ़ायदा लेने वाला बना दे। देखिए फ़र्ज तो हर एक अदा कर लेता है, असल तो अजीमत है ना। आप देखिए जैसे लॉन का सूट हर एक ले लेगा, आप कहते मुझे आला से आला लेना है, दुनिया में समझ आती है ना मिसाल, तो क्या मैं सिर्फ बस ज़ाहरी दीनदारी से चली जाऊंगी दुनिया से। तो इंशाल्लाह जब बड़े इरादे होंगे, और देखिए आप सब खुशकिस्मत हैं कि आप कुरान की क्लास में बैठ के ये आयत सुन रहे हैं, हो सकता है इस आयत की सीडी बन जाए, इसका लेक्चर, इसका लिंक बाहर चला जाए, कई नए लोग सुनेंगे इंशाल्लाह, मुझे पता है। लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आप इस सफ़र का हिस्सा बन चुके हैं। दुआ ये करें कि अल्लाह ताला हमें आखिरी दम तक जमाए रखे। सफ़र के शुरू में बहुत लोग साथ होते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले बहुत सारों की हिम्मतें टूट चुकी होती हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी हिम्मत ना टूटे, कलमा पढ़ते हुए दुनिया से जाएं और इस्लाम को गालिब करते हुए दुनिया से जाएं। एक आलिम का नाम ले लेती हूँ तो भी कोई हरज नहीं, ना लूँ तो भी कोई हरज नहीं, लेकिन सारी ज़िंदगी इसी तड़प को दुनिया को देते रहे इस्लाम का गलबा। और नबी सल्लम की बहुत बात करते थे, इसी तरह के किसी जलसे में थे तो दुश्मनों ने कुछ फूल पेश किए और उसमें बम था, और स्टेज पे बम फूटा और फिर ज़ख्मी हुए और 2-3 दिन के बाद दुनिया से चले गए। तो उनकी जो आखिरी स्पीच थी ना, उसके क्लिप्स किसी ने भेजे, पहले भी सुने हुए मैंने, तो उसमें वो यही बातें करते हुए दुनिया से गए कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है इस पर। ये शेर पढ़ रहे थे और उसी वक्त वो बम का धमाका हुआ और फिर वो उसके बाद कुछ नहीं कह सके। तो मुझे ऐसे लगता है अल्लाह ताला दुनिया में भी दिखाता है ना कभी कभी, जिस चीज़ का आपको दर्द होता है ना, याद रखें आप जिस बात में सच्चे होंगे ना, आप मौत के वक्त वही काम कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें दीन के साथ सच्चा कर दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.